नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। कहा सरकार हाल के पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में आज पटना से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने दो अन्य आरोपियों बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश को भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। पूर्वी चंपारण जिले के रामनगर में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश हुई। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। अररिया में नूना नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या सरकारी भर्ती की प्रक्रिया, सभी में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है।
हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि देश में पूर्ण बहुमत वाली एक स्थिर सरकार बनी है और ऐसे में सरकार के लिए भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च है।
ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है।
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया। 10 साल में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें नंबर पर पहुंचा। वैश्विक महामारी के कालखंड और विश्व के अलग अलग कोने में चल रही संघर्षों के बावजूद भारत ने ये विकास दर हासिल की है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। आप मेरी सरकार भारत को विश्व तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई।
श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाएगी।
मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाए। देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों को खोलने का काम भी तेजी से चल रहा है। आप इस क्षेत्र में सरकार एक और निर्णय लेने जा रही है। आप आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा।
सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में आज पटना से दो आरोपियों मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों ने पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को नीट परीक्षा से एक दिन पहले रात भर के लिए बुक कराया था। इस विद्यालय में 20 से 25 परीक्षार्थियों को इकट्ठा कर उन्हें उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को इसी विद्यालय के परिसर से जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। इस बीच जांच एजेंसी ने बेऊर जेल पहुंचकर आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश को पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया है। कल पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को इन दोनों आरोपियों की 7 दिनों की रिमांड दी थी। इधर हजारीबाग में सीबीआई की टीम ने ओएसएस विद्यालय के प्राचार्य से लंबी पूछताछ की है। जांच एजेंसी को इसी विद्यालय से पेपर लीक होने का अंदेशा है। इस मामले में अब तक 5 राज्यों से 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार परीक्षाओं में अनियमितता रोकने के लिए जल्द ही नया कानून लाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में केंद्र सरकार की तर्ज पर इस संबंध में कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा।
इस पर कार्रवाई चल रही है, हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में जदयू सांसदों के साथ मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार में भाजपा और जदयू का मिलजुल कर काम करने और कुशासन, भ्रष्टाचार तथा अपराधीकरण से लड़ने का लंबा इतिहास है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों दल सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बिहार से नवनिर्वाचित सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह समेत 6 सांसदों ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इन नए सांसदों को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने की। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और बेरोजगारी दर को कम करना है।
हमारा विभाग है एमएसएमई, आज काम कर रहा है और इसमें उनको ट्रेनिंग देने की बात है, उनको सहायता देने की बात है, बैंकों से जो लाभ मिलना चाहिए कैसे फैसिलिटेट करेंगे वो है, कानून में हमारी कहीं कोई पिचदगियां हैं उसको सरलीकरण करने की बात है और अधिक से अधिक महिलाओं को भी इसमें जोड़ने की बात है। तो कहने का मतलब जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है इसको आगे किए बिना, इसको हर तरह से समृद्ध किए बिना हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले के रामनगर में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश हुई, वहीं गोपालगंज में 91.4 और सुपौल के बसुआ में 85.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी पटना से होकर गुजर रही है, इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्सों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश जबकि शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है।
मॉनसून बिहार के कुछ भागों में आगे बढ़ गया है और इसकी उत्तरी सीमा पटना से गुजर रही है और अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून बिहार एवं झारखंड के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा जबकि शेष भाग में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है।
इधर आज राजधानी पटना के कई हिस्सों में बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। अररिया जिले से होकर गुजरने वाली परमान, बकड़ा, रतवा और नूना नदी उफान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सिकटी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भाग में बहने वाली नूना नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है।
नूना नदी का पानी पररिया पंचायत के सालगुड़ी, कचना, बांसबाड़ी, सिंधिया, घोड़ा चौक और खोरागाछ पंचायत के ओलाबाड़ी गांव के दर्जनों घर में घुस गया है। इन गांव की सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी का बहाव हो रहा है। सिंधिया तटबंध पर नूना नदी का कटाव काफी तेज है। कचना से बबुला डांगी और कचना से अंसारी टोला जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। कचना गांव का जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क पूरी तरह भंग हो गया है। इधर प्रशासन की ओर से तटबंधों पर बाढ़ निरोधात्मक कार्य जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए अररिया से गौतम सिंह सहगल।
सीतामढ़ी जिले में अधवारा समूह की झीम नदी उफान पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत झीम नदी पर आरसीसी पुल के डायवर्जन के टूटने से प्रखंड मुख्यालय से पूर्वी भाग के दर्जनों गांव का सीधा संपर्क टूट गया है। डायवर्जन टूटने से नदी का पानी पुनर्दाह, राजबारा, पश्चिमी पंचायत के ब्रह्म स्थान के पास से बह रही है। इससे पश्चिमी पंचायत के गांव समेत परिहार प्रखंड के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार।
इधर किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डूबा डांगी गांव के पास कनकई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इससे नदी पर बने एक पुल का पाया धंस गया। जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि पुल पर वाहनों की आवाजाही तत्काल बंद करा दी गई है। लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने को कहा गया है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज गयाना में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। मैच रात 8 बजे से शुरू होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारतीय टीम अपने आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 24 रन से जीत दर्ज करने के बाद सुपर 8 राउंड में अंक तालिका में शीर्ष पर रही। दूसरी ओर इंग्लैंड सुपर 8 राउंड में दूसरे नंबर पर रही। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, जो फाइनल की राह तय करेगा। मैच पर बारिश की वजह से असर पड़ सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसकी सलामी जोड़ी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में रोहित शर्मा की शानदार पारी के अलावा विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया। कोहली पर इस करो या मरो वाले मैच में रन बनाने का दबाव है। भारतीय गेंदबाजों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव की तिकड़ी मजबूत दिखी। इंग्लैंड की टीम भी मजबूत है, जो सेमीफाइनल में कड़ी टक्कर देगी। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
नेत्रहीनों के कल्याण के लिए विशेष योगदान देने वाली महान समाजसेवी हेलेन केलर की आज जयंती है। इस अवसर पर पटना में नेत्रहीन परिषद की ओर से हेलेन केलर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। परिषद के महासचिव डॉ नवल किशोर शर्मा ने कहा कि हेलेन केलर आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। कहा सरकार हाल के पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में आज पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने 2 अन्य आरोपियों बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश को भी पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। पूर्वी चंपारण जिले के रामनगर में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश हुई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। अररिया में नूना नदी का पानी कई निचले इलाकों में फैला। साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।